मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 4 अप्रैल 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मित्रों विशेष रूप से स्वागत करता हूं मैं अपने उन 7 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 10 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन नौजवान दोस्तों के नाम हैं सुधांशु कुमार, आपका गांव है महुआ, जिला दरभंगा बिहार से हैं। अंजू देवी, आप दिल्ली से हैं। रश्मि पैकरा, आप शंकरगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं। अक्षय कुमार महतो, आप धनबाद झारखंड से हैं। राजेश कुमार आचार्य, आप भुवनेश्वर ओडिशा से हैं। निशा कुमारी, आप नई दिल्ली से हैं। सोनी कुमारी, आप भी नई दिल्ली से हैं। तो सुधांशु, अंजू, रश्मि, अक्षय, राजेश, निशा और सोनी, आप 7 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं मुख्य विषय के बारे में आऊं, मैं कुछ सूचनाएं आप सबको देना चाहूंगा, खासकर हमारे 10th बैच के स्टूडेंट्स को। सूचना यह है दोस्तों कि हमारे जो 10th बैच के स्टूडेंट रहे हैं, जो क्लास प्रेजेंटेशन होते हैं जिसे हम नोट्स कहते हैं, याद रखिए वो सारे के सारे नोट्स आपके ईमेल पर भेज दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ आप लोगों को ध्यान होगा कि क्लास के लास्ट डे पर फोटोग्राफर आते हैं और वो फोटो खींचते हैं, वे फोटो भी आप सबके पास भेज दिए गए हैं। तीसरी चीज, आप लोगों को ध्यान होगा कि क्लास खत्म होने से 1-2 दिन पहले हम लोगों ने आप सबसे जो आपके नाम की लिस्ट होती है उसको अपडेट कराया था। उसमें जो पूरा का पूरा आपका बैच है, उन स्टूडेंट्स के नाम हैं और उनके ईमेल एड्रेसेस हैं, यानी कि ये कह लीजिए इसे आप कॉन्टेक्ट लिस्ट कह सकते हैं। मित्रों, वह कॉन्टेक्ट लिस्ट भी आप लोगों को भेज दिया गया है, यानी कि 3 चीजें भेज दी गई हैं। नंबर 1 क्लास नोट्स, नंबर 2 फोटोग्राफ्स और नंबर 3 कॉन्टेक्ट लिस्ट। आप अपने ईमेल पर जाकर इन्हें देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सूचना थी। इसके बाद मैं थोड़ी सी सूचना आप लोगों को एक और देना चाहूंगा। कुछ दिन पहले मैंने अपने स्टूडेंट से रिक्वेस्ट की थी कि अगर क्लास में आने के बाद वे कुछ परिवर्तन महसूस कर रहे हों तो मुझे सूचित करें। कई स्टूडेंट्स ने इसके बारे में मुझे सूचित किया है, जिसमें इमरान खान हैं, हरमेश रेवरिया हैं और हैं कौशिक दास पश्चिम बंगाल से। मैं आपको कौशिक दास के कुछ शब्द पढ़कर सुनाना चाहूंगा जो उन्होंने मुझे लिखकर भेजा है, खासकर अपने प्रतिक्रिया के रूप में कि वो कैसा महसूस करते हैं। कौशिक दास, मुझे याद आ रहा है कि आप मुझसे व्यक्तिगत रूप में मिले थे, अपनी समस्याओं को लेकर के आपने थोड़ी सी चर्चा की थी, मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है। वेस्ट बंगाल से कौशिक दास, देखिए इन्होंने क्या लिखा है, मैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म वाला हिस्सा आपको सुना रहा हूं। आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर माई एक्सपीरियंस अबाउट माई चेंजेस आफ्टर अटेंडिंग 15 डेज ऑफ क्लासेस। मुझे 15 दिन की क्लासेस अटेंड करने के बाद अपने अंदर जो परिवर्तन महसूस हो रहा है उसके अपने अनुभव शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है। इट वॉज नॉट जस्ट ए क्लास, ये केवल एक क्लास नहीं थी, बट इट वॉज ए ट्रेनिंग, बल्कि यह एक प्रकार का प्रशिक्षण था, दैट शेप माई हैबिट्स ऑफ थिंक एंड अप्रोच टू एनी टॉपिक इन ए साइंटिफिक एंड अ लॉजिकल वे, जिसने मेरे सोचने के तरीके और मेरी आदतों को एक आकार दिया और किसी भी टॉपिक को कैसे मैं साइंटिफिक तरीके से और बड़े तार्किक तरीके से अप्रोच कर सकूं, यानी कि उन्हें देख सकूं, इसके बारे में भी मुझे जानकारी मिली। आई फाइंड दिस इज नॉट जस्ट इन स्टडी बट इन रियल लाइफ ऑल्सो। मैंने यह पाया कि यह केवल हमारे अध्ययन के लिए, पढ़ाई के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि जिंदगी के लिए भी जरूरी है। आई एम वेरी ग्लेड टू अनाउंस, मुझे यह घोषित करते हुए बहुत खुशी हो रही है, दैट द क्लेम ऑफ चेंजिंग आवर थॉट्स बाई सर इज एप्ट इन माई केस, यानी कि सर सर उन्होंने मेरे लिए यूज किया है कि सर जो इस बात का दावा करते हैं कि ये क्लास आपके को निश्चित रूप से बदलेगी, वह कम से कम मेरे मामले में तो बहुत पूरी तरह सही उतरी है। थैंक यू कौशिक आपके इस फीडबैक के लिए। और इमरान और हरमेश, मैं आपके फीडबैक समय को देखते हुए नहीं पढ़ पा रहा हूं, लेकिन आप लोगों ने भी इसे सूचित किया है, इसके लिए आप लोगों का भी अलग से बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, मैं एक थोड़ा सा करेक्शन आप लोगों को बताना चाहूंगा। कुछ दिनों पहले मैंने दल बदल विधेयक जो कानून आया था, 52nd अमेंडमेंट, उसके बारे में बात की थी। उसमें एक छोटा सा करेक्शन और है कि जो 52nd यानी कि 52वां जो संविधान संशोधन है, उसमें एक तिहाई दल के अगर एक तिहाई सदस्य जो मेंबर हैं ऑलरेडी एमपी एमएलए हैं, वो टूटकर अगर अलग हो जाते हैं तो वो उनकी मान्यता रद्द नहीं होती है, ये मेंशन किया गया था। लेकिन 91 जो 91वां संविधान संशोधन आया, उसमें 1/3 को बढ़ाकर 2/3 कर दिया गया है, यानी कि 67%। तो अब वो 33% की जगह 67% हो चुका है। आप उसे थोड़ा सा करेक्ट कर लें। दोस्तों, न्यूज में कुछ विशेष नहीं है, उसके बारे में चर्चा करने की गुंजाइश नहीं दिखती है। करेंट कंटेंट के तहत एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक बहुत खूबसूरत आर्टिकल आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, प्लीज आप सब उसे जरूर देखें। और अब आप महसूस कर रहे होंगे करेंट कंटेंट के अंतर्गत हम लोग अलग किस्म के आर्टिकल्स थोड़े से दे रहे हैं, जो सीधे सीधे मेंस में तो खासकर आपके लिए बहुत ही सहायक होंगे। तो मित्रों, उसे आप बहुत ध्यान से देख लें। जहां तक न्यूज़पेपर्स का सवाल है, मैं आज आपको एक दैनिक भास्कर का संपादकीय प्रोवाइड कर रहा हूं, उसमें उन्होंने घोषणा पत्र पर कुछ बातें की हैं। यानी कि चुनाव के समय में पार्टी अपने अपने घोषणा पत्र जारी करती है, लेकिन बाद में फिर उन घोषणा पत्रों का क्या होता है, वो घोषणा पत्र उस पर वो उसे पूरा करते हैं या नहीं पूरा करते हैं, इसकी कोई देख रेख नहीं होती, इनकी कोई निगरानी नहीं होती, उसको लेकर के उन्होंने एक अच्छा एडिटोरियल लिखा है, प्लीज आप इसको जरूर पढ़ें। इसके अतिरिक्त एक हिंदू का आर्टिकल है, द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स इन लोकपाल। आपको मालूम है कि हमारे देश के पहले लोकपाल की नियुक्ति हो गई है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट मुझे इस साल के खासकर मेंस के लिए मालूम पड़ता है, और इसे आप लोग जरूर पढ़िएगा, और मेरी कोशिश होगी कि इसका हिंदी वर्जन मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊं। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और आज का मुख्य विषय है कि जो प्राइवेट जो फर्म्स हैं, जो कंपनियां हैं, जो उद्योगपति हैं, वो बैंक से कर्ज लेते हैं और इसके बाद उस कर्ज को चुकाने की स्थिति में नहीं होते। जब वो चुकाने की स्थिति में नहीं होते तो आपको मालूम है कि हम उसे एनपीए, मतलब एक ऐसी संपत्ति जो अब चुकाई नहीं जाएगी, मानते हुए उसको खारिज कर देते हैं, राइट? कैसे इस कर्ज को वसूल किया जाए, यानी कि बैंक अपने दिए गए ऋण को इन उद्योगपतियों से कैसे वसूल करें, इसको लेकर के कुछ समय पहले पिछले साल बाकायदे, मतलब 12 फरवरी 2018 को रिजर्व बैंक ने एक आदेश जारी किया था, बैंकों को कहा था, और बैंकों को यह कहा था कि जो ऋण का भुगतान होता है उसकी एक निश्चित अवधि होती है, इस समय तक ये भुगतान कर देंगे, और यदि उस अवधि में एक दिन की भी चूक होती है तो आप उस संपत्ति को एनपीए में डाल दीजिए और फिर बकायदे आप उसकी वसूली की कार्यवाही शुरू कर दीजिए। मैं बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां आपको अर्थशास्त्र दिखाई नहीं देगा। अगर एक दिन भी वसूली की देरी होती है तो आप उसे एनपीए में डाल दीजिए, और एनपीए में डाल देने के बाद आप जो भी वसूली की कार्यवाही होती है उसे वसूली में लग जाइए। जब रिजर्व बैंक ने बैंकों से यह बात कही तो जो दूसरे उद्योगपति थे, जो कंपनियां थी, आप कह लीजिए जो फर्म थी, वो बकायदे उच्चतम न्यायालय में गई और उन्होंने उसके रिजर्व बैंक के इस आदेश के खिलाफ याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ही दिनों पहले अब रिजर्व बैंक के इस आदेश को खारिज कर दिया है। यहां देखिए कि सोचने की क्या बात है, एक दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली बात तो यह है कि रिजर्व बैंक के जो आदेश को उच्चतम न्यायालय ने खारिज किया है, उसका बेस क्या है? वो ये नहीं कह रहा है कि रिजर्व बैंक कुछ गलत कर रहा है या जो जो जिन लोगों ने ऋण ले लिया है उन्हें ऋण उनसे ऋण वसूल न किया जाए, ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। हमें इसे थोड़ा सा समझना होगा क्योंकि इसी चूक के आधार पर हम सच पूछिए तो आगे की सारी चीजों को गड़बड़ कर देते हैं और वही हमारी असफलता का कारण बन जाता है। देखिए, रिजर्व बैंक ने जो उस एक धारा है 35AA, उसके तहत बैंकों को कहा कि भाई तुम वसूल करो, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, देखिए उसके कहने का तरीका अलग है। उसने कहा कि ये जो 35AA है, ये इसके जरिए केंद्र सरकार रिजर्व बैंक को कुछ कहती है, कोई आदेश दे सकती है, राइट? तो अगर रिजर्व बैंक को बैंकों को यह कहना था कि आप वसूल कीजिए, तो सबसे पहले उसे इसके लिए सरकार से अनुमति लेनी चाहिए थी, बस केवल यह कह रहा है। यानी कि जो रिजर्व बैंक ने जो ये कदम उठाया है उसमें प्रक्रियागत खामी है, दूसरी कोई नहीं, उद्देश्यगत कोई खामी नहीं है, प्रक्रियागत खामी है। प्रक्रियागत खामी का मतलब है कि पहले रिजर्व बैंक को चाहिए था कि वो सरकार से इस बात की अनुमति लेती कि हम ऐसा ऐसा आदेश पारित कर रहे हैं, और सरकार अगर उसे इस बात की अनुमति दे देती तो फिर वो इस आदेश को बकायदे बैंकों को दे सकती थी और बैंक अपना काम शुरू कर सकते थे, वो बकायदे फिर अपने ऋण की वसूली में जा सकते थे। मित्रों, ये सिंपल सी जो घटना घटित हुई है वो ये है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनपीए का मामला आपको मालूम है कि बहुत ही संवेदनशील मामला है। वक्त की कमी के कारण मैं ज्यादा विस्तार से आपको बताने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन इसको लेकर आपके बिजनेस स्टैंडर्ड में एक बहुत अच्छा बड़ा आर्टिकल लिखा गया है, मैं वो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। कई अखबारों ने इसको आधार बनाकर एडिटोरियल कमेंट भी किए हैं, मैं वो एडिटोरियल कमेंट भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। उन सब को लेकर आप एक छोटा सा अच्छा नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं: दीपक विश्वास रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, प्रेमचंद यादव कृष्ण कुमार गोपालगंज बिहार से, दीपक रावत देहरादून उत्तराखंड से, भारत कुमार और प्रतीक सिंह थाने महाराष्ट्र से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।